श्री सायराम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
परतीश्वर शंकर शंभो नंदीश्वर शंकर परतीश्वर शंकर साई नंदीश्वर शंकर
परमेश्वरा शंकरा साई
परतीश्वरा शंकरा
शिवरात्रि हर मास आती है, त्रयोदशी चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा अपनी कलाओं को खो रहा होता है, लेकिन वर्ष में एक बारी महाशिवरात्रि आती है। तिथि वही है, पक्ष वही है, लेकिन महीना अलग है, मास अलग है। मास की गणना अलग प्रकार से होती है, एक पूर्णिमा से होती है, एक अमावस से होती है। कोई कहता है फाल्गुन का मास है, कोई कहता है मार्गशीर्ष का। ज्यादातर माघ मास कहा जाता है। उस दिन खास बात यह होती है, चंद्रमा हमेशा की तरह अपनी कलाओं को खो रहा होता है। प्रकृति वर्ष एक ऐसा अवसर होता है आपके पास, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। अगर आप उस रात्रि को जब चंद्रमा धीरे धीरे लुप्त होने वाला हो, उस समय आप अपना ध्यान परमात्मा की ओर लगाएं, तो आप परमात्मा में लीन हो सकते हैं। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। कहने का तात्पर्य, मन धीरे धीरे संसार को छोड़कर परमात्मा में डूब जाए। इसी को महाशिवरात्रि कहा गया। ज्यादातर हम क्या करते हैं शिवरात्रि के अवसर पर, कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वो दिन था शिवरात्रि का जब भगवान शंकर और माता की पार्वती का विवाह हुआ था। कोई कहता है उस समय शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। विचार कीजिएगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं शिवरात्रि के समय, मंदिर में जाते हैं, बड़ी बड़ी पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं, दूध जल बेलपत्र आदि सामग्री लेके आते हैं, और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। अन्य शब्दों में रिचुअल कहा जा सकता है। पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव है कहां पर, कहां रहते हो, कहां है उनका घर। लोग कहते हैं हिमालय में वास करते हैं, टू बी प्रिसाइज लोग कहते हैं कैलाश पर्वत की चोटी पर। बहुत से लोग कैलाश पर्वत जाते भी हैं, परिक्रमा भी करते हैं उसकी। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर सब जगह है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ परमात्मा से भरा हुआ है, परमात्मा सब में है, या सब कुछ परमात्मा में है, किसी भी शब्दों में समझ लें आप। लेकिन हमारे को अलग अलग दिखते हैं, इसलिए हम उनकी खोज में हैं। अब जरा विचार कीजिएगा, अगर ईश्वर सब जगह है तो क्या परमात्मा हमारे भीतर नहीं है, आपके भीतर नहीं है? अगर परमात्मा हमारे भीतर है तो उनकी खोज बाहर क्यों हो रही है भाई? अगर हमारे अंतर में ईश्वर वास कर रहा है, सारे शास्त्र ये कह रहे हैं, ऑल द स्क्रिप्चर्स आर एंडोर्सिंग दिस स्टेटमेंट, तो फिर हमारे को तकलीफ कहां पर है, बाधा कहां से आ रही है, रुकावटें कहां से आ रही है अंदर खोज करने में? इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब आप शांति पूर्वक बैठकर अपने ध्यान को अपने अंतर में केंद्रित करें। लेकिन फिर भी हमें दर्शन नहीं होते ईश्वर के, दे मस्ट बी रीजन बिहाइंड इट, कोई कारण तो होगा उसके पीछे। आप यूं समझिए, आपने चश्मा पहना हुआ है, ग्लासेस पहनी हुई है, लेकिन बाहर आपको सफाई से नहीं दिखा जा रहा, साफ नहीं दिख रहा, क्लियर विजन नहीं आ रहा, क्योंकि आपके ग्लासेस मैली हैं, आपके चश्मे पे मिट्टी जम गई है थोड़ी बहुत। आप क्या करते हैं? जो लोग चश्मा डालते हैं उनसे पूछिए, रोज ग्लासेस साफ करते रहते हैं, एक कप्पा रख से अपने पास बार बार रगड़ के साफ करते हैं। आप घर में भी सफाई करते हैं ना, आपके शीशों पर जब कोई धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, काई जम जाती है कई बार, तो यार साफ करते हैं या करवाते हैं? अगर हमारे अंतर की दृष्टि में, अंतर के चक्षुओं में, अंतर की आंखों में, जो आंख भीतर की ओर देखती है, उसके लेंस के ऊपर, उनके शीशे के ऊपर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर की धूल जमी हो, तो भीतर कैसे देख पाएंगे? इसलिए कहा गया हमारे को प्रयास करना होता है। सारी स्पिरिचुअल साधना, द इंटायर स्पिरिचुअल साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो हमारी आध्यात्मिक साधना है, वो ये है कि हम अपने भीतर में से इन षड शत्रुओं को खींच खींच कर, रगड़ रगड़ कर बाहर निकालें। बहुत समय लग जाता है। आप अपने भीतर में जाके अपने आप से पूछें क्या आपके अंदर किसी को लेके इच्छा है, या जो 10 साल पहले थी क्या इच्छा के कीटाणु उसी प्रकार से अभी वसे हुए हैं। आर यू स्टिल इन्फेक्टेड बाय हेट्रेड बाय जेलसी? विचार कीजिएगा कि आज भी काम मुझे सताता है, कि आज भी मेरी इच्छाएं मेरे को खींच खींच के संसार में ले जा रही हैं। शिवरात्रि के रात अगर बैठ के अपने भीतर झांकेंगे आपको मौका मिलता है। जब आप अपने मन को आसानी से, शब्दों पर गौर कीजिएगा, आसानी से, सामान्यवश ये कठिन होता है, लेकिन उस रात को, ये सामान्यवश नहीं है, उस रात को आपको एक अवसर मिलता है, प्रकृति आपकी सहायता कर रही है कि आप अपने अंदर टटोल टटोल कर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। पॉसिबिलिटी इज देयर प्रोवाइडेड यू मेक एन अटेम्प्ट। सोचिएगा आपने देखा कभी आप जाएं अगर मंदिर में, आप देखेंगे भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उनके आगे नंदी बैठा होता है। नंदी कौन है? भगवान शंकर का वाहन, द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा। लेकिन नंदी का मुख होता है भगवान शंकर की ओर, कान खड़े होते हैं। लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, नंदी के कान में कुछ फूंकते हैं, अर्थात कुछ बोलते हैं, बुदबुदा के सॉफ्टली सॉफ्टली बात करते हैं, फिर दोनों कानों के बीच में से शिवलिंग को देखते हैं और प्रणाम करके आ जाते हैं। तो मैंने पूछा एक भाई भाई से, भाई मैं जरा जानना चाहता हूं, आप अभी नंदी के कान में कुछ बोल रहे थे, मैं जानता हूं ये कोई पर्सनल चीज है आपकी जो बोल रहे थे, मैं शब्द नहीं जानना चाह रहा क्या बोल रहे थे, लेकिन ये माजरा क्या है? कहते हैं नंदी के कान में मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाल दिया, मतलब मैंने विनती कर दी है, मेरे कई काम रुके हुए हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर दो भाई तुम मेरा काम करवा दो। फिर उनके कानों के बीच में से देख के भगवान शंकर का दर्शन कर लेता हूं, जैसे सब लोग करते हैं। Isn't this amazing? हैरानी की बात नहीं है। आप मंदिर में जाने के बाद भी परमात्मा से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, गोइंग थ्रू नंदी। नंदी क्या है? बैल, बुल। वाहन, जिस प्रकार लिंगम भगवान शंकर का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, यूं मानिए फिलहाल, उसी प्रकार से नंदी एक जीव का प्रतीक है। नंदी अपने चारों को जमीन, अपने चारों पांव को जमीन पे टिका के भगवान शंकर की ओर केंद्रित है। क्या इससे हमारे को संदेश नहीं मिलता कि अपने मुख को संसार से हटाकर भगवान शंकर की ओर कर दें, या ईश्वर की ओर कर दें, परमात्मा की ओर कर दें? कान खड़े हैं भगवान शंकर की वाणी को सुनने के लिए, संसार की वाणी को सुनने के लिए नहीं। नंदी के चारों टांगे जमीन पर टुकी हैं, सत्य धर्म शांति और प्रेम के प्रतीक है वो। नंदी इज द सिंबल ऑफ धर्म। नंदी धर्म का प्रतीक है। वो कह रहे हैं धर्म सत्य धर्म शांति प्रेम सब कुछ मैंने परमात्मा को ही अर्पित किया है। मैं इस राह पे चल रहा हूं, पांव से चलते हैं। सत्य धर्म शांति प्रेम हमारे पास तो दो टांगे हैं भैया, काम और आसान हो गया। सत्य धर्म ले लो, सत्य शांति ले लो, सत्य प्रेम ले लो, शांति प्रेम ले लो, धर्म शांति ले लो, धर्म प्रेम ले लो, कोई भी दो चीजें आप चूज कर लीजिए, चुन लीजिए। लेकिन आपकी दृष्टि, आपका फोकस, आपका एंटायर फोकस संसार के हट के अगर परमात्मा की ओर हो जाए पल भर के लिए भी, आप भगवान से दूर नहीं है। नंदी को नंदीश्वर कहने लग गए लोग, क्योंकि नंदी एक जानवर की योनि में होते हुए भी, यूं समझिएगा, उसका ध्यान परमात्मा पर केंद्रित है। और हम मानव बनने के पश्चात भी अपने ध्यान को संसार से हटा ही सकते हैं। संसार इतना आकर्षित लगता है, विचार कीजिएगा, और सच्चाई से ऑनेस्टली अपने ही गिरेबान में झांक के अपने आप से पूछिएगा, आप दिन में कितनी बार मोबाइल फोन चेक करते हैं? हर दस मिनट तो बहुत लंबा समय हो गया भाई मेरे। हर पल दो पल के बाद जेब से मोबाइल निकाल कर देखते तो मैसेज तो नहीं आ गया। मैसेज पढ़ा फॉरवर्ड कर दिया, या पढ़ा भी नहीं व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, या फेसबुक में क्या हो रहा है, ट्विटर में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है। तो हमारा ध्यान कहाँ है? यंत्र की ओर है। यंत्र में क्या है? संसार की चीजें आ रही हैं, हम संसार में फंसने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं, अपने आप को डुबो रहे हैं, फंसा रहे हैं, दलदल में घसते जा रहे हैं। विचार कीजिएगा, हमारा प्रयास होना चाहिए नंदी की भांति, जो अपने आप को ईश्वर पे, अपने ध्यान को ईश्वर पे केंद्रित कर रहा है, अपने आप को ईश्वर में डुबो रहा है। और शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब प्रकृति, द नेचर, द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, सारे ग्रह नक्षत्र आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं। बेटे, अगर आज आप रात को बैठ के अपने ध्यान को ईश्वर में लगाते हो तो आपके लिए थोड़ा सरल रहेगा, इट वुड बी इजी। विज्ञानी कहते हैं, विज्ञानी कहते हैं कि सृष्टि जो है, जो पूरा कॉस्मोस है, एक शिवलिंग के आकार में है और दिन प्रतिदिन एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। और हम ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, सारी सृष्टि एक लिंगम के रूप में है। और शास्त्र ये भी कहते हैं परमात्मा लिंग में वास करते हैं, जो सूक्ष्म है, जो अंग के अंदर है, जो आपके बॉडी के अंदर है। बॉडी में एक संघ होता है, विच इज द कॉन्टेक्ट विद द आउटर एंड द इनर वर्ल्ड, बाहरी और अंतरिक्ष संसार से कनेक्शन बनाता है, संपर्क बनाता है। उस संघ में जंगम होता है, जो ऊपर नीचे हिल रहा है, ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसमें आत्मा का वास है। हम कहते हैं आत्मा जो है एक लिंग रूप में है हमारे भीतर, जिसको हमने कह दिया आत्मा लिंग। और वो आत्मा सभी के भीतर है, एक ही रूप में है, आत्मा का स्वभाव एक जैसा है। हालांकि आत्मा का कोई रूप नहीं बताया गया, निराकार है, लेकिन समझने के लिए बात समझिए, जैसे आप आसमान देखते हैं, नीला आसमान है उसमें बादल जा रहे होते हैं, इसी प्रकार से आसमान नीला आसमान है उसके अंदर बादल जा रहे हैं, वो जीव है। जब बादल बरस जाएंगे, बादल लुप्त हो जाएंगे, इसी प्रकार जीव जा रहा है, शरीर लेके जा रहा है, लेकिन शरीर उसका समाप्त हो जाएगा। शास्त्र ये कह रहा है कि हम अपने भीतर जाके, आत्मलिंग में जाके, अपने अंदर बैठी हुई आत्मा, बैठे हुए परमात्मा से मिलने का प्रयास करें। बस वो कुछ नहीं, छोटी बात है, लेकिन बिना प्रयास के वो नहीं हो सकता। सोचिएगा, हमारे जीवन में जितनी भी सफरिंग आती है, जितने भी कष्ट आते हैं, वो 11 रुद्र के कारण आते हैं। रुद्र 11 प्रकार के हैं। ठीक है जी, लेकिन 11 रुद्रों को सरल भाषा में बताया जाए, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। फाइव ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन एंड द माइंड। जब ये 11 के 11 रुद्र नियंत्रण में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, 11 के 11 रुद्र अगर परमात्मा की ओर अपने मुख को मोड़ लें, अपने को फोकस कर लें, केंद्रित कर दें ईश्वर के ऊपर, उस दिन आपकी महाशिवरात्रि सफल हो जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है, लोगों ने किया है। जहां तक आ गया, अगर आप 11 सेकेंड के लिए, ओनली फॉर 11 सेकेंड यू कैन फोकस ऑल दिस 11 रुद्रास ऑन टू गॉड, यू गेट लिबरेशन। 11 के 11 रुद्र अगर आपने 11 सेकंड के लिए, 11 पल के लिए अगर आपने परमात्मा में केंद्रित कर दिए, आपके लिए मुक्ति के द्वार सदा सदैव के लिए खुल जाएंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा। विचार कीजिएगा, इस शिवरात्रि में हम कैसे अपने भीतर बचे हुए षट्छत्रों को बाहर निकालें, अपने केंद्र या अपने इंद्रियों को परमात्मा पर केंद्रित करें। जय श्री सायराम।